ओम शांति। भारत के इतिहास में राजा दुष्यंत की एक कहानी है। एक बार वो आखेट के लिए किसी वन में गए और वहां पर कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचे। दिशा भटक गए थे, रास्ता भूल गए थे और वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से होती है, ऋषि पुत्री। और उसको देखकर उनके हृदय में प्रेम के फूल खिलते हैं और वो उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और उनका और शकुंतला का गंधर्व विवाह होता है। कण्व ऋषि उस समय किसी तीर्थ यात्रा पर गए हुए होते हैं और कई मास राजा दुष्यंत वहीं रहते हैं और फिर उनको याद आता है कि मेरा राज्य भी है और फिर इस तरह अपने हस्तिनापुर की याद जब आती है तो उससे कहता है कि मैं जा रहा हूं। कुछ समय के बाद जब तुम्हारे पिताजी आए तो तुम आ जाना, परंतु वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। वो कहते हैं जाना जरूरी है, तो अपनी एक अंगूठी उस शकुंतला को वो दे देते हैं और चले जाते हैं। एक बार शकुंतला ऐसे ही दुष्यंत की याद में मगन बैठी होती है और वहां दुर्वासा ऋषि आते हैं और उनका आवभगत वो नहीं करती है। ऋषि को क्रोध आता है और वो उसे शाप दे देते हैं कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। वो क्षमा याचना करती है। दुर्वासा कहते हैं यदि उसे कोई वस्तु दिखा दी जाए तो उसे याद आ जाएगा, कोई यादगार। कण्व ऋषि वापस आते हैं। शकुंतला अपने पिता को सारी बात बताती है और इस समय शकुंतला गर्भवती है तो उसके पिता कुछ शिष्यों को साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं, परंतु जैसे ऋषि ने शाप दिया था दुष्यंत सब कुछ भूल चुका है। वो कहता है ये कौन है मुझे पता नहीं, और वो कहता है कि ये मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, मैं तो इस स्त्री को जानता तक नहीं। और इस तरह जब वो अपमानित होती है तो शास्त्रों की बातें हैं, वहां दिखाया है कि वो ऋषि कन्या जो वास्तव में विश्वामित्र और मेनका की पुत्री होती है, मेनका वहां प्रकट होती है और उसको वहां से लेके चली जाती है। आते समय जब शकुंतला आ रही होती है उसके पास जो अंगूठी होती है किसी नदी में आचमन जो करते हैं, वो करते करते उसकी अंगूठी उस समुद्र में पानी में गिर जाती है, इसलिए दुष्यंत उसे नहीं पहचान पाता है और वो अंगूठी भी नहीं रहती है। वो अंगूठी एक मछली खा लेती है, मछुआरों को वो मछली मिलती है, उसको काटते हैं तो अंगूठी वो राजा के पास दे देते हैं और राजा को याद आती है शकुंतला की और फिर पश्चाताप होता है और उसको ढूंढना चालू करता है, वो कहीं नहीं मिलती। और एक बार इसी तरह दिखाया है शास्त्रों में जो देवासुर संग्राम हुआ मंथन, उसके पश्चात वो लौट रहा होता है और सोचता है कश्यप ऋषि के आश्रम में जाऊं, और वहां जाता है देखता है एक छोटा सा बालक कोमल एक शेर का मुंह फाड़ रहा है, शेर से लड़ रहा है, खेल रहा है शेर के साथ। आश्चर्य उसे होता है ये किसका बालक है, और उस बालक को अपनी गोद में लेकर लेने की कोशिश करता है। ये चित्र आपने देखा होगा, काफी प्रसिद्ध चित्र है। तो वो दासिया कहती है इस बालक को मत लो नहीं तो जल के खाक हो जाओगे। क्योंकि उसके पास कुछ एक लाल काले रंग का कहीं कुछ एक आभूषण होता है या एक धागा जैसा कुछ होता है। पर जैसे ही वो उस बालक को लेता है, वो आभूषण उसका गिर जाता है, और ये आभूषण तभी गिरने वाला होता है जब उसके पिता उसको उठाए। तो वो देखता है ये किसका पुत्र है, तो पाता है कि उसकी पत्नी शकुंतला वही है, और उस शकुंतला को लेकर फिर वो वापस आता है। उस पुत्र का नाम होता है भरत, और जिसी से भारत का नाम भारत पड़ा। ये कहानी हमने आपको क्यों बताई? एक प्रॉमिस, एक वादा दुष्यंत ने किया था कि तुम आना, पर वो भूल जाता है। वो प्रॉमिस, वो ओथ, और उसे कब याद आता है? जब वो उस अंगूठी को देखता है तब। व्यक्ति बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है, परंतु ऐसा कुछ ना कुछ होता है। किसी का शाप इस कहानी में उदाहरण, तो इस ब्राह्मण जीवन में, इस कुमार जीवन में कुछ और दूसरी बातें आती हैं कि जो हमने वादे किए थे, और जो हमने प्रॉमिस किया था, और जो हमारे इरादे थे, वो हम विस्मृत हो जाते हैं। जैसे ही उसे वो अंगूठी दिखती है, तब उसे याद आता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इस कुमार जीवन में भी जब हम ज्ञान में आए और जब हम बाबा का बने, तब हमने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष रूप से कुछ ना कुछ स्वयं के साथ प्रॉमिसेस किए थे, बाबा के साथ किए थे। और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, वो प्रतिज्ञाएं, वो प्रॉमिसेस और वो इरादे कहाँ पिघल गए पता ही नहीं चला। वो जो इंटेंशंस थे, जो हमारी भावनाएं थी, डिसीजंस थे, वो कहाँ गए और कौन बीच में आ गया पता ही नहीं चला। जो पहले सोचा था यहां और आज यहां है, इस बीच इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी बातें हो गई कि धीरे धीरे वो सारे शुभ इरादे, परमात्मा प्रत्यक्षता के इरादे, ओथ, प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञाएं कहीं ना कहीं खो गई। एक बहुत बड़ा प्रश्न है सबके लिए, व्हाई डू वी ब्रेक प्रॉमिसेस? हम अपनी की हुई प्रतिज्ञाओं को क्यों छोड़ देते हैं? हमारे जो इंटेंशंस थे उस प्रतिज्ञा के साथ जुड़े हुए, वो क्यों विलीन और पिघलने लगते हैं? स्थूल उदाहरण अगर दे, दो व्यक्ति हैं, दोनों इरादे कहो या प्रॉमिसेस कहो, इरादों का एक अर्थ प्रॉमिस भी है। दो व्यक्तियों का आपस में संबंध है और दोनों ने बहुत सारे वादे किए हैं, और एक व्यक्ति वो सारे तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? या फिर कोई एक व्यक्ति है जिसका किसी एक प्रोजेक्ट, एक लक्ष्य के प्रति फुल डेडिकेशन है, प्रतिज्ञाएं की, सब कुछ किया, और वो क्यों कम हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि हम अपने जीवन को देखें, तो कितनी बार छोटी छोटी और कोई कोई चीजों के लिए हमने प्रतिज्ञाएं की थी, और अपनी ही प्रतिज्ञाओं को हमने ही तोड़ा था या तोड़ रहे हैं। क्यों? क्या कारण हो सकते हैं? क्या कहेंगे? हम प्रतिज्ञा क्यों तोड़ते हैं? संसार में दो व्यक्ति हैं, एक ने सोचा मुझे आईएएस में आगे टॉपर आना है, और जैसे जैसे प्रिपरेशन कर रहा है, धीरे धीरे टूट गया संकल्प, प्रतिज्ञा इरादा बदल गया, पिघल गया। क्यों? क्या कहा? हाँ, थक जाते। एक कारण है थकान। जब थकान आ जाती है तो फिर इरादा पिघल जाता है। एक दूसरा, समय के साथ उससे ज्यादा अच्छा मिलने पर पुराना हम छोड़ देते हैं। दूसरा, तीसरा, हाँ, उमंग उत्साह कम हो जाता है। जो शुरुआत में था करना है करना है करना है, और धीरे 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 एक मास, दो मास, छह मास कम हो गया, उसके वजह से वो इरादा अब नहीं रहता है। और हाँ, दुनिया के दबाव में आ जाते, प्रेशर में आ जाते हैं। और हाँ, अनलिमिटेड क्या, नीड्स एंड वांट्स, बहुत सारी बाकी की अनावश्यक इच्छाएं बीच में आ जाती है, तो वो इच्छा बाहर रह जाती है, बाजू में रह जाती है, और बाकी इच्छाओं को पूर्ण करने में लग जाते हैं, इसलिए वो इरादा खत्म हो जाता है। और परिस्थितियां, लाइफ इज हार्ड, या फिर वो जो वादा किया था, वो जो इरादा था, ऐसा लगने लगता है तब तो कर लिया था पर है बहुत कठिन। वो एक भीष्म प्रतिज्ञा थी। भीष्म के जीवन में शुरुआत से अंत तक इतनी बातें आई कि सभी बातों ने उसे विवश किया कि प्रतिज्ञा को तोड़ दो, पर उसने अंत तक नहीं तोड़ा, अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ल रहा, अटल, तोड़ी नहीं प्रतिज्ञा। नहीं तो इतने सारे अवसर थे, इतनी हलचल थी जो रामायण में दिखा, महाभारत में दिखाई है, पर उसने तोड़ी नहीं, लगा रहा। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है, कुमार अर्थात भीष्म समान भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले पवित्रता की। और क्या कारण है? असहयोग मिलता है, और कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और तोड़ना बहुत सहज है, करना बहुत कठिन। यदि किसी ने प्रतिज्ञा की या इरादा कर लिया कि मुझे एक हफ्ता तक सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, एक ही हफ्ता, एक हफ्ता छोड़ो, एक दिन, ये ठीक है, एक दिन इरादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, सारे दिन भर ऐसी सारी बातें होगी जो उसको तोड़ेगी, उसी दिन परीक्षाएं और भी ज्यादा आएगी। जब किसी बात का इरादा कर लिया जाता है तब और ज्यादा परीक्षाएं आती है, और वो परीक्षाएं मजबूर करती है तोड़ने के लिए। अब तक कुछ नहीं हुआ था, जिस दिन पवित्रता का इरादा कर लिया, ठान लिया कि ये करना है, फिर वो सारी बातें आएगी जो उसे तोड़ने लगेगी। इसलिए प्रॉमिस हम पूरा नहीं कर सकते। और प्रॉमिस क्यों नहीं फुलफिल कर सकते? पुराने स्वभाव संस्कार बीच में आ जाते हैं। और वाई वी कैनॉट फुलफिल अवर प्रॉमिसेस एंड इंटेंशंस? पीछे क्यों नहीं फुलफिल कर सकते? हर एक अपने आप को देखेगा तो पाएगा कि हमने बहुत कुछ सोचा था, बहुत प्लानिंग की थी, यहां से मधुबन में गए, वहां पर भट्टियां चालू थी, हमने बहुत प्लानिंग की, पर जैसे ही घर वापस आए टूटने लगा। यहां से प्रतिज्ञा की कि ये करेंगे वो करेंगे, ऑफिस में गए और सब कुछ टूट गया। क्यों ऐसा? क्यों? पहले तो कारण, अपने अपने कारण को खुद ढूंढना है। और कभी कभी ऐसे भी सोचते हैं कि अभी तोड़ देते बाकी फिर से करेंगे प्रतिज्ञा, चांसेस आर अनलिमिटेड, नेक्स्ट चांस फिर आएगा, फिर करेंगे प्रतिज्ञा, अभी एक ही थोड़ी ना आई है। ये भी एक साइकोलॉजी का विषय है मनुष्य मन के, कि व्यक्ति प्रॉमिसेस करता है और तोड़ता है। तो इस भट्टी में हर एक को ऐसी तीन बातें अपने लिए प्रॉमिस करनी है, अपने साथ सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सॉफ्ट म्यूजिक, बाबा के सामने जाएंगे, बाबा को देखेंगे और अपने जीवन की ऐसी वो कौन सी तीन बातें हैं जो मेरे पुरुषार्थ में सबसे बड़े विघ्न हैं, ऐसी वो कौन सी चीजें हैं, वो बाबा को सुनाएंगे जो आज तक शायद किसी को भी नहीं सुनाई, ऐसे वो कौन से कर्म हो गए थे और जो नहीं होने चाहिए थे और अब भी चालू है, और फिर उसको हम लिखेंगे। ऐसी केवल तीन पॉइंट मोस्ट पर्सनल, जो हमको किसी भी देहधारी के साथ शेयर करना नहीं है और ना ही हमने की है ना ही करेंगे, परंतु आज इस भट्टी में अपने जीवन की वो अत्यंतिक गोपनीय बात जो सबसे सीक्रेट है और जो श्रीमत के विरुद्ध है, विघ्न है, बाधा है, विकार है, पाप है, कुकर्म है, विकर्म है, वो सच्चे दिल से बाबा को सुना देंगे। मैं आत्मा, सूक्ष्म शरीर सहित सूक्ष्म वतन में हूं, अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख, बाबा से दृष्टि ले रहा हूं, अपने जीवन को देख रहा हूं, जब से ब्राह्मण बना तब से आज तक मेरे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न, संस्कार, हैबिट, एडिक्शन क्या है? बाबा से दृष्टि लेते हुए जीवन की ऐसी वो तीन बातें बाबा को बताएंगे। इन्हीं के कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आंखें बंद चिंतन भगवान के सम्मुख, बाबा शक्ति भर रहा, बाबा को सच सच सुनाएंगे, मैं क्या करूं और कैसे इन तीन बातों से मुक्त हो जाऊं। सब कुछ कर लिया फिर भी ये बातें अब भी हैं। बाबा मेरी मदद करो तीव्र पुरुषार्थ के इस मार्ग में। आपको प्रत्यक्ष करना, संपन्न बनना लक्ष्य है। आंखें खोलकर अब ये तीनों बातें अपनी डायरी में लिखेंगे। सभी पेन और पेपर अपने जीवन के तीन सबसे बड़े विघ्न, संकट, मुसीबत, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, आदतें, एडिक्शन, पाप, विकर्म, सूक्ष्म पाप, संस्कार, कुछ भी हो उसको अपनी डायरी में लिखेंगे, सभी लिखेंगे। बाबा देख रहे हैं, जो भी लिख के आज मैं उसके सम्मुख रखूंगा, बाबा मुझे उससे मुक्त कर देंगे, इस निश्चय से लिखना है। जितना प्रगाढ़ निश्चय होगा भगवान पर, उतनी सफलता। ओम शांति।